भीम के अंत्येष्टि संस्कार की सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदि का उनके पास आना और भीष्म का श्री कृष्ण आदि से देह त्याग की अनुमति लेना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर में जाने के बाद कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नगर और प्रांत के लोगों का यथोचित सम्मान किया तथा उन्हें अपने-अपने घर जाने की आज्ञा दी। इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और पुत्र युद्ध में मारे गए थे, उन सबको बहुत सा धन देकर धैर्य बंधाया। तदनंतर युधिष्ठिर का राज्य सिंहासन के ऊपर अभिषेक किया गया और उन्होंने मंत्री आदि समस्त प्रकृतियों को अपने-अपने पद पर स्थापित करके वेदवेता एवं गुणवान ब्राह्मणों से उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने 50 दिनों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद जब सूर्य देव को दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण में आए देखा, तो उन्हें कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी की मृत्यु का स्मरण हो आया और वे यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के साथ हस्तिनापुर से चलने को उद्यत हुए। जाने के पहले उन्होंने भीष्म जी का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए घृत, माला, सुगंधित द्रव्य, रेशमी वस्त्र, चंदन, काला अगुरु, अच्छे-अच्छे फूल तथा नाना प्रकार के रत्न आदि सामग्री भेज दी। फिर धृतराष्ट्र और गांधारी को आगे करके माता कुंती, सब भाई, भगवान श्री कृष्ण, बुद्धिमान विदुर और सात्यकी को साथ लेकर वे नगर से बाहर निकले। उनके साथ रथ, हाथी, घोड़े आदि राजोचित उपकरण और वैभव का महान ठाट बाट था। महातेजस्वी युधिष्ठिर भीष्म जी के स्थापित किए हुए त्रिविध अग्नियों को आगे रखकर स्वयं पीछे-पीछे चल रहे थे। यथा समय वे भीष्म जी के पास जा पहुंचे, उस समय पराशर नंदन व्यास, देवऋषि नारद और देवल ऋषि उनके पास बैठे थे तथा महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए अन्य देशों से आए हुए बहुत से राजा उन महात्मा की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म नंदन सहित बाकी महर्षियों आदि को भी प्रणाम किया। इसके बाद वे ऋषियों से घिरे हुए पितामह के पास जाकर बोले, दादाजी, मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो तो आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आपके बताए हुए समय पर अग्नियों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी यहां पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरु जंगल देश के लोग भी आए हुए हैं। आप आंखें खोलकर इन सब की ओर देखिए। आपके कथना अनुसार इस समय के लिए जो कुछ करना आवश्यक था, वह सब कर लिया गया है। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगा नंदन भीष्म जी ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त भरतवंशी राजाओं की ओर देखा, फिर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर मेघ के समान गंभीर वाणी में सम्योचित वचन कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम अपने मंत्रियों के साथ यहां आ गए, यह बड़ी अच्छी बात हुई। भगवान सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ गए हैं। इन तीखे बाणों की शैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीते हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर भीष्म जी ने धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा, राजन, तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो, तुमने अर्थ तत्व का भी भली भांति निर्णय कर लिया है। अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है। संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और धर्मों का तुम्हें पूरा पूरा ज्ञान है, अतएव तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वैसी होनहार थी। तुमने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया है। ये पांडव जैसे राजा पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी हैं। वे सदा गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं। तुम धर्म में स्थित रहकर अपने पुत्रों के समान ही इनकी रक्षा करना। ये सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे। मैं जानता हूँ इनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजनों के प्रति बड़ी भक्ति रखते हैं। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या रखने वाले और दुराचारी थे, अतः उनके लिए कभी शोक न करना। धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण से भीष्म जी बोले, भगवन, आप देवताओं के भी देवता हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। अपने तीन पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान वामन आपको प्रणाम है। आप शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले हैं। वासुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट, अनुरूप जीव और सनातन परमात्मा भी आप ही हैं। श्री कृष्ण, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और सदा आपकी शरण में रहने वाले इन पांडु पुत्रों की रक्षा करते रहिए। मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है, जहां धर्म है उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। इस प्रकार बार-बार कहने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और सारी पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर अंत में वह स्वयं भी काल के गाल में चला गया। भगवन, मैं आपको जानता हूँ। आप वे ही पुरातन ऋषि नारायण हैं जो नर के साथ चिरकाल तक बद्रिका आश्रम में निवास करते रहे हैं। श्री कृष्ण, अब आप आज्ञा दीजिए, मैं इस शरीर का परित्याग करूंगा। आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म जी, मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूं। आप वसु लोक को जाइए। इस लोक में आपके द्वारा अणु मात्र भी पाप नहीं हुआ है। राजऋषि, आप दूसरे मार्कंडेय के समान पितृ भक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनीत दासी की भांति आपके वश में है। भगवान के ऐसा कहने पर गंगा नंदन भीष्म ने पांडवों तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृदों से कहा, अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे इसके लिए आज्ञा दो। तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना, सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ब्राह्मणों की भक्ति करना तथा धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिए। यह कहकर भीष्म जी ने अपने सब सुहृदों को गले से लगाया और युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा, राजन, तुम सामान्यतः सभी ब्राह्मणों की, विशेषतः विद्वानों की और आचार्य तथा ऋत्विजों की सदा ही पूजा करते रहना।